मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। 6 दिसंबर 2014 के इस afeias.com के डेली ऑडियो गाइडेंस में मैं डॉक्टर विजय अग्रवाल आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। मित्रों, एकेडमी की जो मार्च 2015 में 15 दिन की क्लासेस लगने वाली हैं, उसके लिए 3 नौजवान साथियों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। इनका भी मैं हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं। इन दोस्तों के नाम हैं प्रतिमा कमल सेन, आप बिलासपुर से हैं, राजीव रघुवंशी भोपाल से हैं और दुर्गेश सोनी बीकानेर राजस्थान से हैं। तो प्रतिमा, राजीव और दुर्गेश, आप तीनों का मैं एकेडमी की अपनी पूरी टीम की ओर से स्वागत करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि आप अपना मानस बनाकर आइए। आप जितना सोचकर आएंगे शायद उससे अधिक आप यहां से लेकर के जाएंगे। मित्रों, आज के इस ओपनिंग रिमार्क्स की शुरुआत मैं एक थोड़ा अलग तरीके से करना चाह रहा हूं, जो सीधे सीधे आपके सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी से जुड़ा हुआ है। और सच पूछिए तो उसके साथ आपकी मानसिकता क्या होनी चाहिए, यानी कि तैयारी की आपकी मानसिकता क्या होनी चाहिए, उसकी दिशा क्या होना चाहिए, उसके डेप्थ क्या होनी चाहिए, उसके एंगल्स क्या होनी चाहिए, शायद इन सारी बातों का खुलासा इसके माध्यम से हो सके। ये तो मुझे लगभग 1.5 साल पहले की एक घटना आज अचानक याद आ गई सुबह सुबह जब मैं मॉर्निंग वॉक कर रहा था। और वो ये थी कि एक लड़के का मेरे पास फोन आया, सिविल सर्विस के रिजल्ट आए ही थे और उसके नेक्स्ट डे मेरे पास एक लड़के का फोन आया और वो बड़ा गुस्से में था, नाराज था और सच पूछिए तो थोड़ा बहुत निराशा भी उसकी आवाज में झलक रही थी। उसकी शिकायत ये थी कि 3rd अटेम्प्ट उसने यूपीएससी का दिया था और रिजल्ट आने के बाद उसका सिलेक्शन पहले की तरह ही इस बार भी नहीं हो पाया था। 1 अटेम्प्ट उसके पास और बाकी था और उसने इस बात की बड़े दमखम के साथ घोषणा की कि अब मैं यूपीएससी की परीक्षा में नहीं बैठूंगा। मैंने पूछा कि क्यों, क्या बात हो गई, अभी तुम्हारे पास एक चांस है और जब भी सेलेक्ट होना होगा एक ही चांस में सेलेक्ट होगे, चाहे वो तुम्हारा चौथा हो या तीसरा हो, सिलेक्शन तो एक ही बार में पूरा का पूरा होगा और तुमने 3 साल तैयारी की है तो तुमको इस बार बैठना चाहिए, अपना चांस नहीं छोड़ना चाहिए, उसका आखिरी चांस था। लेकिन उसने शिकायत के लहजे में बिल्कुल बड़े दमखम के साथ ये कहा कि नहीं, यूपीएससी मेरे लायक नहीं है, मतलब यूपीएससी मुझे नहीं समझ सकती, वहां पता नहीं क्या ऐसा होता है, कैसे वो करते हैं। मतलब उसके कहने का मतलब यह था कि मेरा सिलेक्शन तो कब का हो जाना चाहिए था लेकिन यूपीएससी मेरे साथ कुछ धोखाधड़ी कर रही है, मेरे साथ कुछ भेदभाव कर रही है, ये उसकी अप्रोच थी। मुझे नहीं मालूम कि वो उसका तात्कालिक आक्रोश था या लंबे समय तक प्रिवेल करने वाला, सस्टेन करने वाला आक्रोश था। इसके बाद मेरी उससे कोई बात नहीं हुई। ये मित्रों एक घटना मैंने आपके सामने रखी। दूसरी एक छोटी सी बात आपको बताता हूं कि कल मुझे जो एक मेल मिला है उसमें यह है कि वो मेरे जो दोस्त हैं, नौजवान दोस्त, मैं आप सबको दोस्त ही कहता हूं और बेहतर होगा कि हम दोस्त ही बने रहें क्योंकि दोस्त बनने पर आप एक समान स्तर पर बात कर सकते हैं, वेवलेंथ कहीं न कहीं समान होती है। उन्होंने अपने मेल में शिकायत ये की है कि वो मेल भेजते हैं और मैं उनके मेल का कोई रिप्लाई नहीं देता हूं, वो जो सलाह देते हैं उन सलाहों को मैं इंक्लूड नहीं करता हूं और इन सब के कारण वो बहुत ज्यादा हर्ट हैं। ये उनका मेल था। आगे की और बात थी, उन्होंने कहा, ली भी लिखा है कि अगर इससे कुछ बात होती है तो मैं इसके लिए माफी भी मांगता हूं। खैर वो बात अलग है, मैं मित्रों व्यक्तिगत रूप से नहीं जा रहा हूं, मैं उस लड़के के बारे में भी कुछ नहीं कह रहा हूं जिसने पहली बार, जिसकी मैंने चर्चा की फोन पर मुझे कहा, और मैं इस मेल के बारे में भी व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं कह रहा हूं। मेरा कंसर्न तो उस मानसिकता से होता है। अब ये देखिए, ये दोनों चीजें हैं, ये दोनों घटनाएं हैं, दोनों बड़ी अलग अलग दिख रही हैं लेकिन मानसिकता के स्तर पर दोनों बिल्कुल एक जैसी हैं। पहली घटना को अगर हम लें तो अगर यूपीएससी में उसका सिलेक्शन अभी तक नहीं हो पाया है तो वो बजाय ये सोचने के कि मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाया है, वो ये सोच रहा है कि यूपीएससी मेरा सिलेक्शन नहीं कर रही है, यानी कि जो सारा का सारा दोष है वो यूपीएससी के ऊपर है, स्वयं के ऊपर नहीं। जबकि तार्किक रूप से अगर वो थोड़े भी इत्मीनान से सोचे तो इस तथ्य को पकड़ने में उसको कोई देरी नहीं लगेगी कि ये न तो यूपीएससी आपको जानती है, न वहां किसी व्यक्ति से आपकी कोई दुश्मनी है, कोई लेना देना नहीं है। आपकी कॉपी है, आपका परफॉर्मेंस है और उसके आधार पर यूपीएससी निर्णय ले रही है, तो यूपीएससी आपके अगेंस्ट क्यों होगी? जब हम ये सोचते हैं कि वो हमारे अगेंस्ट है तो दोस्तों हम अपना रिव्यू करना बंद कर देते हैं, हम अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं, और जहां हम अपने बारे में सोचना बंद कर देते हैं तत्काल कह लीजिए वहीं हमारा अपना जो विकास है, अपनी जो ग्रोथ है वो ब्लॉक हो जाती है, रुक जाती है, और सच पूछे तो हमारी एक पीछे की यात्रा शुरू हो जाती है, हम बैक टू पवेलियन होने लगते हैं। दूसरी घटना, अगर मेल का जवाब नहीं दिया जा रहा है, एक बात मैं मानूं, या मैं किसी के द्वारा दिए गए सजेशन को शामिल नहीं कर रहा हूं, और बट नेचुरली मेरे पास बहुत से सजेशंस आते हैं, इन्हीं एक की बात नहीं बता रहा हूं जिनकी मैंने अभी चर्चा की, मेरे पास बहुत से सजेशंस आते हैं कि हिंदू को शामिल कीजिए और अपने लेक्चर्स के टाइम को बढ़ाइए और संडे को भी होना चाहिए और आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं, वैसा क्यों नहीं करते। मेरे पास तो ऐसे विचित्र विचित्र मेल आते हैं कि डॉक्टर अग्रवाल थोड़ी सी और मेहनत कर लीजिए, मेरे पास ऐसे मेल भी रखे हुए हैं। अब मैं जवाब नहीं देता कि मैं उनसे कहूं कि भाई थोड़ा सा आप मुझे असिस्ट कर दीजिए, या आपको आईएएस बनना है तो मैं इतनी मेहनत मैं कर रहा हूं मेरे बिहाफ पर, आप थोड़ी सी मेहनत कर लीजिए, या थोड़ी सी आपके लिए भी तो मैं कुछ छोड़ दूं। तो बड़े विचित्र विचित्र किस्म के मेल आते हैं दोस्तों, इन मेल का क्या कहना, मैं तो मानसिकता की बात कर रहा हूं। अब मानसिकता पहली यह है कि मेरे मेल शामिल नहीं किए जा रहे हैं और जिसकी वजह से मैं हर्ट हुआ हूं, मतलब मुझे दुख भी हुआ है। अब मैं इसको दूसरी तरह से एनालाइज करता हूं कि अगर किसी के मेल शामिल नहीं किए जा रहे हैं, किसी की सलाह नहीं मानी जा रही है, तो सबसे पहले उसे अपने बारे में सोचना चाहिए कि मेरा मेल शामिल क्यों नहीं हो पा रहा है। क्या मैं कोई ऐसी बात नहीं लिख पा रहा हूं जिसका जवाब दिया जाना चाहिए, नंबर एक, या अगर मैं उस बात को लिख भी पा रहा हूं तो क्या इस तरीके से नहीं लिख पा रहा हूं कि जिसका जवाब देना जरूरी समझा जाए। मेरे पास बहुत से मेल आते हैं, एक दिन में ढेर सारे मेल्स होते हैं दोस्तों, मैं बहुत कम शामिल करता हूं उसमें से, जो शामिल करने लायक होते हैं वो मैं सब शामिल करता हूं। अब आप देखें कि मेरे पास मेल आता है, ऊपर आ जाएगा उनका ईमेल एड्रेस, मैसेज बॉडी, और इसके बाद है कि व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ यूपीएससी, ऊपर कुछ नहीं है सर, कुछ भी नहीं डियर सर, कुछ भी नहीं, नथिंग, व्हाट इज द एज लिमिट ऑफ यूपीएससी। अब ये बताइए कि जिनके पास इस तरह के लिखने की तमीज न हो, एक व्यवहार होते हैं, एक संस्कार होते हैं और एक शिष्टाचार होता है, चलिए हम संस्कार तो बड़ी चीज होगी, शिष्टाचार मानना आता, अगर जिनके पास ये शिष्टाचार नहीं होगा तो आपको लगता है कि मुझे उनका जवाब देना चाहिए, नंबर एक। और सच पूछिए तो मैं जवाब इसलिए भी नहीं दूंगा कि ऐसे लोग सिविल सर्विस में न आए तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि ये शो कर रहा है कि उनका ईगो कितना हाई है, दे डोंट रेस्पेक्ट एनीबॉडी, उनका ईगो बहुत हाई है। और सिविल सर्वेंट बनने के बाद याद रखिए आप सिविल रूलर बनने नहीं जा रहे हैं, आप सर्वेंट बनने जा रहे हैं, नौकर की मानसिकता होनी चाहिए, आप लोगों की सेवा करने जा रहे हैं, और जब इंटरव्यू में पूछा जाएगा तो आप यही कहेंगे कि मैं तो देश की सेवा करना चाह रहा हूं, तो ये ईगो लेकर के तो सेवा नहीं हो सकती। फिर दूसरी बात दोस्तों कि आप पूछते हैं कि व्हाट इज द एज लिमिट, व्हाट सब्जेक्ट आई शुड चूज। अब आप ये बताइए कि आपके सब्जेक्ट के बारे में मैं क्या बता सकता हूं कि कौन सा लेना चाहिए। फिर देखिए मित्रों, आपको दो चीजें बड़े ध्यान में रखनी चाहिए, नंबर एक कि आप किस पोजीशन से पूछ रहे हैं, और दूसरा आप किससे पूछ रहे हैं। आपकी पोजीशन एज एन स्टूडेंट है जो आईएएस की तैयारी करना चाह रहा है, और बताने वाला कौन व्यक्ति है, बताने वाला व्यक्ति क्या इंक्वायरी काउंटर है जहां से आप इन छोटी छोटी चीजों के बारे में जानकारी लें कि कितने अटेम्प्ट होते हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं। मेरे पास मेल्स ढेर सारे ऐसे हैं, इसका मतलब सीधी सी पता लग जाता है कि ये जो स्टूडेंट है जो पूछ रहा है कि एज लिमिट कितनी है या कितने अटेम्प्ट मिलते हैं, इज नॉट सिंसियर, वो सिंसियर है ही नहीं। एक दिन ऐसे उसके मन में आई तरंग सी उठी, यार जरा पता कर लो, तो akfeis.com में भेज दो, इसमें मेल भेज दो, पहुंच जाएगा, चलो, और भेज दिया। साफ लग रहा है कि इज नॉट कंसर्न अबाउट इट, उसकी उसको इस बात की कोई चिंता नहीं कि उसके मेल के शामिल होगा या नहीं होगा, भूल जाएगा वो, उसने ये भी शायद भूल चुका होगा वो ऐसा लड़का कि उसने कभी कुछ ऐसा पूछा भी था, क्योंकि जो सिंसियर होगा उसके बारे में पता करेगा, बकायदे यूपीएससी की वेबसाइट है, सब चीजें हैं और बेसिक चीजें वो पता कर लेगा। तो सवाल ये उठता है दोस्तों कि जो आप मेल में लिखते हैं और जहां आपने भेजा है, क्या उसकी उपयुक्तता मैच कर रही है आपके अपने स्थिति की उपयुक्तता, कि आप किस रूप में पूछ रहे हैं, और दूसरा जिससे आप पूछ रहे हैं क्या वो उपयुक्तता है, और अगर नहीं है तो आपका मेल शामिल नहीं होगा। बहुत लंबे लंबे मेरे पास मेल आते, आधे आधे पेज के मेल आते हैं, और एक लड़का तो रोज ही मेल लिख रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कितनी बार मना कर लिया कि तुम मेल बड़े बड़े मत लिखो, लेकिन वो लगातार लिखता जा रहा। ठीक है, हमने पढ़ना बंद कर दिया और जवाब देना बंद कर दिया, क्या करेंगे। और यूपीएससी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपको जो अपना उत्तर देना है वो कितने शब्दों में देना है, 100 शब्दों में, दो मैक्सिमम 200 शब्दों में, और आपके पास जानकारी बहुत है, आपके पास प्रश्न पूछ लिया गया कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या उपाय किए जाने चाहिए, तो आप तो इसके ऊपर निबंध लिख देंगे कि 2000 शब्दों का। लेकिन मुश्किल ये हो रही है कि जनरल स्टडीज के पेपर में मेंस में कह रहा है 200 शब्दों में बताइए, तो आप में कैपेसिटी होनी चाहिए कि आप उन 2000 शब्दों को 200 शब्दों में रिड्यूस कर सके। यानी कि जो मेल आप मुझे भेज रहे हैं, हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि इसे थोड़े से में नहीं किया जा सकता, लेकिन आप उसको थोड़े से में कीजिए, यही तो क्षमता है, यही तो सिविल सर्विस की तैयारी है। और मित्र, मुझे तो लगता है कि आप सब जो मेल भेजते हैं उस मेल में इतने कंटेंट होने चाहिए कि लगे कि ये सच में सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा है ये स्टूडेंट। कंटेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कंटेंट, कि आप तथ्य क्या डाल रहे हैं। मित्रों, आपको ध्यान होगा कि मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया और हरी भूमि के दो एडिटोरियल कमेंट दिए थे, और उसको लेकर के अभी भी स्टूडेंट लगातार उत्सुक हैं। बहुत सिंपल सी चीज है कि आप केवल ये देखने की कोशिश कीजिए कि टाइम्स ऑफ इंडिया में कंटेंट ज्यादा है तथ्य, या फिर हरी भूमि में ज्यादा है, किस में ज्यादा है। देखिए, दोनों की अपनी अपनी उपयोगिता है, दोनों के अपने अपने रीडर्स हैं, मतलब मैं उसमें मूल्यांकन नहीं कर रहा हूं कि दोनों में से कौन अच्छा है कौन खराब है, मैं तो मूल्यांकन केवल इस आधार पर कर रहा हूं कि सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सा अच्छा है और कौन सा सेकेंडरी है। याद रखें कि जब भी आप कोई चीज लिखते हैं तो उसमें आपको यह बहुत स्पष्ट रूप से ध्यान रहना चाहिए कि आप किसके लिए लिख रहे हैं। जैसे मैंने अभी भ्रष्टाचार की बात कही, तो इस भ्रष्टाचार को आप जनरल नॉलेज में भी लिख सकते हैं, आप इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट में भी लिख सकते हैं, और आप इसके ऊपर एसे भी लिख सकते हैं, और इसी पर आप एथिक्स वाला जो फोर्थ पेपर है आपका जनरल स्टडीज का मोरलिटी, उसमें भी आ सकता है यही क्वेश्चन। एक ही सब्जेक्ट है भ्रष्टाचार, और भ्रष्टाचार के कितने सारे एंगल्स हैं, ये इकोनॉमिक्स का भी सब्जेक्ट है, ये एथिक्स का भी सब्जेक्ट है, ये सोशियोलॉजी का भी सब्जेक्ट है, ये एसे का भी सब्जेक्ट है, ढेर सारे सब, एक यहां तक पॉलिटिकल साइंस का भी सब्जेक्ट हो सकता है। तो आपको ध्यान ये होना चाहिए कि आप किस सब्जेक्ट के लिए करप्शन वाले इश्यूज को लिख रहे हैं, बात कर रहे हैं, उस तब आपको तथ्यात्मकता की सही जानकारी होगी कि यस दिस इज कॉल्ड कंटेंट। ये कंटेंट जब आप इकोनॉमिक्स में लिखेंगे तो आपके पास डाटा होना चाहिए कहने के लिए, इतना काला धन है, इतना है, ये स्टेप्स है। जब आप पॉलिटिकल साइंस में लिखेंगे तो आपके पास कुछ एक्ट आपके पास होने चाहिए कि हाँ ये प्रिवेंशन एक्ट आया हुआ है, वो आया हुआ है। और जब निबंध में लिख रहे हैं तो फिर आप ले लीजिए कि कालिदास के युग से लेकर के अब तक चला आ रहा है, वहां आप इन सब चीजों की चर्चा कर सकते हैं। मुझे लग रहा है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं आप मित्रों समझ रहे होंगे। तो मित्रों, इसके जरिए जो मैं आपसे जो शेयर करने जा रहा हूं, मैं अब उसको समअप करता हूं, तो केवल ये कि मैं फिर से रिपीट करूंगा कि मेरा कंसर्न किसी एक स्टूडेंट से नहीं है, एक पर्सन से नहीं है, उस मानसिकता से है। और मानसिकता यह है कि आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, आपकी ये मानसिकता होनी चाहिए। आप कुछ भी लिखते हैं, खासकर अगर सिविल सर्विस से इंटरेक्ट, चाहे आप मैगजीन को लिखें, चाहे आप मुझे लिखें, चाहे आप किसी प्रोफेसर से बात करें, चाहे आप क्लास में कोई क्वेश्चन पूछें, अगर आप एज ए सिविल सर्विस स्टूडेंट के रूप में पूछ रहे हैं तो आपका लेवल सिविल सर्विस स्टूडेंट होना चाहिए, आपका एंगल वही होना चाहिए, आपका डायरेक्शन वही होना चाहिए, तब आप सही मायने में जो कर रहे हैं उसका सही तरीके से पूरा पूरा फायदा उठा पाएंगे। तो मित्रों, मैंने शुरुआत में कहा था कि इसको लेकर के मैं आपसे कुछ सिविल सर्विस की तैयारी की जो मानसिकता होती है उसके बारे में चर्चा करूंगा, और मैं समझता हूं कि इससे निश्चित रूप से आप लोगों को एक दृष्टिकोण मिलेगा कि कैसे आप अपनी छोटी छोटी चीजों में भी सिविल सर्विस की तैयारी को शामिल कर सकते हैं। और इसी को कहा जाता है एनालिटिकल जो पावर है, जो क्षमता है विकसित करना। मित्रों, अब मैं आता हूं कल की आकाशवाणी समाचार पर, और कल की आकाशवाणी के समाचार में दो तीन चीजें हैं जो इम्पोर्टेंट मैं जो आपसे डिस्कस करना चाहूंगा। कल के समाचार में आपने सुना है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के बारे में कि सेल ने अपनी कंपनी, कह लीजिए अगर आप उसको कंपनी कहते हैं, पीएसयू है ये, पब्लिक सेक्टर यूनिट है, उसके शेयर्स मार्केट में फ्लोट किए, जिसको डिस इन्वेस्टमेंट नाम दिया गया। वर्ड था न्यूज में डिस इन्वेस्टमेंट। उसने अपनी पूरी पूंजी का 5% डिस इन्वेस्ट किया। मैं केवल वर्ड्स पे जा रहा हूं, फिर मैं आपको इसको डिस्क्राइब करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। और मैं समझता हूं कि जो स्टूडेंट अक्टूबर नवंबर की क्लास में आए थे, उन्हें ये बात बहुत आराम से और ज्यादा अच्छे से समझ में आएगी। और सच ये है कि बिना समझे भी शायद न्यूज सुनते ही समझ में आ गई होगी, लेकिन फिर भी चूंकि दूसरे स्टूडेंट्स का जो दायरा है, संख्या है, वो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं उनके लाभ के लिए ये बात यहां शेयर कर रहा हूं। दूसरा उसमें वर्ड था वो है कि खुदरा निवेशकों का बहुत अच्छा प्रतिदान मिला। खुदरा निवेशक इसमें आए और लगभग 2.66 गुना पैसा आया, और जिससे 17,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। ये न्यूज में टोटल मिलाकर के था। अब देखिए कि इससे स्टोरी क्या बन रही है, सिविल सर्विस की तैयारी के लिहाज से कौन सी स्टोरी फ्रेम होती है। आपको मालूम है कि सरकार की जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, जो सरकार जिन उद्योगों को चला रही है, उसमें से बहुत से ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा घाटे में चल रहे हैं। कुछ तो नवरत्न है, महारत्न है, वो फायदे में चल रहे हैं। जैसे एयर इंडिया की बात आप ले रहे हैं, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस बहुत ज्यादा घाटे में कंपनियां चल रही हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया इस्पात का कारखाना है, और मिश्रित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंतर्गत, जो जवाहरलाल नेहरू जी की जो समाजवादी थ्योरी जो थी, उसमें उन्होंने ये इस्टैब्लिश किया था कि जो बड़े बड़े उद्योग हैं जिनमें बहुत बड़ी पूंजी लगती है, चूंकि उसमें प्राइवेट इन्वेस्टर्स नहीं आएंगे, इसीलिए सरकार उनको खोलेगी। और चूंकि ये बहुत आधारभूत ढांचे का निर्माण करते हैं उद्योग के लिए, तो सरकार इन्हें प्राथमिकता देगी। उसी के अंतर्गत स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड कारखाना स्थापित, कंपनी स्थापित की गई। प्राइवेट सेक्टर में भी इस्पात की है, जिसमें टाटा इस्पात आप जानते हैं कि वो बहुत बहुत पुरानी और बहुत ही प्रसिद्ध कंपनी है, टाटा स्टील जिसको हम कहते हैं। तो मित्रों, धीरे धीरे जब ये कंपनियां बहुत नुकसान में आने लगी, तो अब ये हुआ कि या तो सरकार इनको पैसा दे दे करके किसी तरह से जीवित रखे, या फिर कुछ ऐसा करे ताकि ये कम से कम स्वावलंबी तो बने। अब स्वावलंबी बनाने के लिए क्या किया जाए, तो 1990 के बाद जब से ये आर्थिक उदारीकरण का दौर चला है, ये बात लगातार कही जाने लगी है कि जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं उनमें प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इनवाइट किया जाए, मतलब उनका जो उनकी जो पूंजी है उसके शेयर्स बेचे जाएं। शेयर्स बेचने से क्या होगा मित्रों, बट नेचुरली कि जब आप शेयर्स बेच देते हैं, शेयर्स का मतलब है भागीदारी, साझेदारी। जैसे इसमें इन्होंने कहा खुदरा निवेशक, खुदरा निवेशक है कि मतलब इन्होंने अपने शेयर पब्लिक के लिए निकाल दिए। 100-100 रुपए के शेयर होंगे, 10-10 रुपए के शेयर होंगे, उसका कितना एक शेयर का मूल्य था मुझे नहीं मालूम, वो मैंने डिटेल्स में क्लास में अपनी बात रखी थी। शेयर निकाल दिए, पब्लिक ने वो शेयर खरीदे, शेयर खरीदे नहीं, अभी अप्लाई किया है, याद रखिए। तो अप्लाई किया तो उसको कितना अप्लाई कर दिया, 2.66 गुना। जैसे मान लीजिए कि मोटे तौर पर समझाने के लिए गणित के फार्मूले से मैं कहूं, तो मान लीजिए कि सेल ने 1,00,000 शेयर निकाले, तो 1,00,000 शेयर के अगेंस्ट में 2,66,000 शेयर खरीदने के लिए एप्लीकेशन आ गए। जैसे कि आपके यूपीएससी में 1,000 पोस्ट होती है और 9,00,000 लोग उसके लिए अप्लाई कर देते हैं, बस। तो 2.66 गुना लोगों ने अप्लाई कर दिया, इसका मतलब है कि 2.66% पर एक शेयर, मतलब एक शेयर मिलेगा, 2.66 को एक शेयर मिलेगा, आप मोटे तौर पर ये कर सकते हैं, और इससे 17,000 करोड़ रुपए आएंगे। अब आप देखिए होता क्या है कि चूंकि अब इसमें पब्लिक का पैसा लग गया है, तो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है, जो कंपनी का पूरी तरह से संचालन करते हैं, जो कंपनियों के लिए नीतियां बनाते हैं, अब उसमें डेफिनेटली केवल ब्यूरोक्रेट्स या सरकारी नौकरी वाले ही लोग नहीं होंगे, उसमें अब जनता के प्रतिनिधि भी होंगी। अब देखिए ये जो शेयर जो जिन लोगों ने खरीदे हैं, इसमें कुछ खुदरा होंगे, कुछ कंपनीज होंगी, कुछ बैंक्स भी हो सकते हैं, तो ये लोग जिनके पास काफी शेयर हो जाते हैं, तो अब उनको ये देखना होता है कि उनके हित भी सुरक्षित रहें, कहीं ऐसा ना हो कि कुछ भी निर्णय लिया जा रहा है और कंपनी को नुकसान हो जाए। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है उसमें इनके भी मेंबर हो जाते हैं, और जब मेंबर हो जाते हैं तो स्वाभाविक है फिर कंपनी पर निगरानी बढ़ जाती है, हर लोग हर व्यक्ति ध्यान देने लगता है और ऐसे में फिर कंपनियों पुराने ढर्रे पर नहीं चल सकती। हमेशा कोशिश की जाती है कि कंपनी को कैसे फायदे में लाया जाए। तो डिसइन्वेस्टमेंट की बात आप देखेंगे ज्यादातर सरकारी कंपनियों के लिए कही जाने लगी है, की जाने लगी है, ताकि उनका जो मैनेजमेंट है वो बदल सके, ब्यूरोक्रेटिक एक तरह से ढांचे से हट करके मैनेजमेंट ज्यादा से ज्यादा प्रोफेशनल हो सके और जो मैनेजमेंट है वो फिर पब्लिक के प्रति अकाउंटेबल हो सके, रिस्पॉन्सिबल हो सके, क्योंकि खुदरा निवेशक पब्लिक है। तो मित्रों, मैं समझता हूं कि इसके माध्यम से आपको जो इकोनॉमिक सेक्टर का जो हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक थोड़ा सा क्लियर हुआ होगा। अब मैं आता हूं दूसरी खबर पर और वो है मालदीव। छोटी सी खबर थी और आज के अखबारों में भी वो खबर है कि मालदीव में पानी की बहुत एक्यूट शॉर्टेज हो गई। और मजेदार बात यह है मित्रों कि मालदीव समुद्र के किनारे है, एकदम किनारे है मालदीव। तो मैं गया हुआ हूं, मालदीव बहुत उसकी जो राजधानी है माले वो बहुत बहुत छोटी सी जगह है। और आपको नक्शे में चाहिए कि आप मालदीव को देखें तो केरल, भारत के दक्षिण में जो केरल है, इसके बाद देखेंगे श्रीलंका और इसके बाद माले दिखाई देगा। छोटे छोटे द्वीप हैं उसमें, तो एक आइलैंड पर हम लोग गए हुए भी हैं। समुद्र के किनारे है और वहां पानी की एक्यूट शॉर्टेज है। सोच करके देखिए, मतलब पानी पीने लायक समुद्र का होता नहीं है, आप जानते हैं। तो ऐसी स्थिति में भारत ने वहां पानी भेजा है और न्यूज में यह भी था कि जब पानी का जहाज पानी का विमान कह लीजिए, जहाज तो हम स्टीमर को कहते हैं, जब वहां पहुंचा विमान पहुंचा तो वहां के जो मिनिस्टर्स थे वो उस जहाज की अगवानी करने के लिए एयरपोर्ट पर मौजूद थे। बहुत एक्यूट शॉर्टेज हो गई है, वहां इमरजेंसी लगा दी गई है पानी की कमी के कारण, दंगों की मतलब कह लीजिए लूटपाट और लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बन गई। सच बात है कि पानी तो जीवन का आधारभूत तत्व है। आप देख रहे ना कि वैसे आपके घर में लगातार पानी आ रहा है तो नल खुला है कोई बात नहीं, दाढ़ी बना रहे हैं लेकिन नल खुला हुआ है, लेकिन जब शॉर्टेज ऐसी हो जाती है तब पता लगता है कि इसकी वैल्यू क्या है। मित्रों, जो चीज हमें बहुत आसानी से मिलती रहती है ना उसकी कोई हम वक्त नहीं करते, जब मिलना कठिन हो जाता है उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है तभी उस चीज की वैल्यू पता लगती है। ये आपको समझ में आ रहा होगा मालदीव की इस घटना से। खैर, वो एक अलग बात है। मित्रों, ये आपके लिए जरूरी क्यों है? देखिए, मैं लगातार आपसे ये बात कहता रहा हूं कि जो हमारे पड़ोसी राष्ट्र हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स से रिलेटेड जो क्वेश्चंस होते हैं जिसको आप एक इंटरनेशनल रिलेशन की बात कहेंगे, उसमें हमारे पड़ोसी देश सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। 2013 का क्वेश्चन पेपर हमें इस बात के प्रति विश्वास दिलाता है। आप अगर पिछले साल का क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर नंबर 2, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पेपर नंबर 2, मैं मेन्स की बात कर रहा हूं, उसका जो क्वेश्चन 22 है, जो 22वां है, वो मालदीव पर है। और देखिए, मालदीव पर किस तरह का क्वेश्चन पूछा गया है, मालदीव पर क्वेश्चन है, ये एक बात हुई, लेकिन उस क्वेश्चन का स्वरूप क्या है, ट्रेंड क्या है, फॉर्मेट क्या है, उस पर भी ध्यान दीजिए। मालदीव पर जो क्वेश्चन पूछा गया है मैं यहां पढ़ के सुना रहा हूं, मालदीव में पिछले 2 वर्षों में हुई राजनीतिक घटनाओं की विवेचना कीजिए, यह बताइए कि क्या ये भारत के लिए चिंता का विषय है। 200 शब्द, मैं इंग्लिश में भी पढ़ देता हूं, डिस्कस द पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स इन मालदीव्स इन द लास्ट 2 ईयर्स, शुड दे बी ऑफ एनी कॉज ऑफ कंसर्न टू इंडिया, 200 वर्ड्स, 10 नंबर का है ये। पिछले 2 साल से, ये तो दिसंबर 2013 का पेपर है तो उससे भी पिछले 2 साल ले लीजिए, तो मालदीप में एक तरह से सत्ता का संघर्ष चल रहा था। राष्ट्रपति भारत आए थे, भारत ने शरण दी थी, फिर वहां चुनाव हुए थे, इस तरह की घटनाएं चल रही थी। अब मालदीप हमारा पड़ोसी देश है तो निश्चित रूप से हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप देखिए कि पूछा कि पिछले 2 वर्ष की घटनाओं की विवेचना कीजिए, राइट। तो मालदीप इतना छोटा सा देश है कि वहां बहुत ज्यादा इस घटनाएं घटेंगी नहीं, लेकिन भारत का चूंकि पड़ोसी राष्ट्र है इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पड़ोसी है ये, वो केरल के नीचे से आप जाएंगे तो ऐसी स्थिति में अब जो मालदीव में पानी की कमी हुई और भारत ने तुरंत भेजा है वहां पानी, और यहां तक कि स्टीमर भी रवाना किया, उसमें भी पानी जा रहा। फिर आपने देखा न्यूज में ही हमारे प्राइम मिनिस्टर का कंसर्न, मतलब स्टेटमेंट था कि मालदीव से हमारे मित्रता के संबंध है, जो भी मदद चाहिए, इस तरह की कुछ बात उन्होंने कही थी। इसका मतलब है कि हम बहुत क्लोज रिलेशन मालदीव के साथ एस्टेब्लिश करना चाह रहे हैं और मालदीव से हमारे रिलेशन इसलिए भी बहुत ज्यादा मायने रखते मित्रों कि वहां का जो एयरपोर्ट था वो पहले भारत को उसका ठेका मिला था, लेकिन बाद में उसका ठेका चाइना को दे दिया गया है। और मालूम है कि चाइना एक तरह से भारत को घेराबंदी करने की कोशिश कर रहा है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं चाइना, उनके साथ अपने संबंध बढ़ाना चाह रहा है। नेपाल से उसके ऑलरेडी है ही हैं। पाकिस्तान के साथ भी आपको मालूम ही है कि अभी सार्क सम्मेलन में क्या हुआ, किस तरह से वो सार्क का सदस्य बनना चाह रहा है, पर्यवेक्षक के रूप में अधिक अधिकार लेना चाह रहा है। तो चाइना लगातार कोशिश में है। ऐसी स्थिति में भारत मालदीव की अनदेखी नहीं कर सकता। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना है। अब आप देखिए कि सिविल सर्विस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक छोटी सी घटना है, यह घटना आपके दिमाग में दर्ज हो जानी चाहिए। ठीक इससे पहले सार्क की घटना हुई, ठीक इससे पहले एयरपोर्ट की घटना हुई, तो ये सारी घटनाएं आपके दिमाग में क्रमशः आती चली जानी चाहिए। तब कहीं जाकर के आप ऐसी स्थिति में होंगे कि सिविल सर्विस में जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका सही सही आंसर दे पाएंगे, लिख पाएंगे, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगा मित्रों। इसीलिए मैं कहता हूं कि कंटिन्यूटी इज मस्ट। अखबार पढ़ना, न्यूज सुनना, ये कंटिन्यूटी निहायत ही जरूरी है। और केवल सुनना ही जरूरी नहीं है बल्कि उस पर थोड़ी देर के लिए सोचना और उसे अच्छी तरह से अपने दिमाग में दर्ज करना भी उतना ही जरूरी है मित्रों। इसके बाद तीसरी घटना कश्मीर घाटी में जो कल हुए हैं, 21 जवान जो शहीद हुए, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना। देख रहे हैं कि पाकिस्तान लगातार आतंकवादी गतिविधियों में लगा हुआ है। इसके साथ ही आपको एक और भी मालूम है कि कश्मीर घाटी में दो चरण के चुनाव हो चुके हैं जिसमें 71% वोट्स हुए हैं, जिसके वजह से आतंकवादी थोड़े से घबराए हुए भी हैं। ये उनको दिया गया करारा जवाब है, तो इसलिए वो घटना कर रहे हैं क्योंकि फिर ताकि तीसरे चरण का चुनाव बाधित हो। लेकिन देखते हैं क्या होता है, एक बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। और चौथी जो खबर थी दोस्तों, साध्वी निरंजन जो हमारी स्टेट लेवल स्टेट मिनिस्टर है केंद्र की, उनके प्रति निंदा प्रस्ताव लाने की बात चल रही थी। आपको मालूम है कि उनके एक स्टेटमेंट को लेकर के किस तरह से विपक्षी दल काफी आक्रोश में है, राज्यसभा चलने नहीं दिया जा रहा है, लोकसभा में भी बाधा हुई, लेकिन अब लोकसभा शायद चलने लगेगी। तो ये निश्चित रूप से ये एक दुर्भाग्यजनक वक्तव्य था जिसके लिए उन्होंने माफी भी मांग ली है। प्रधानमंत्री जी ने भी ये कहा है कि उन्होंने माफी मांग ली है, तो संसद को राष्ट्रीय हित में चलने दिया जाए। अब मित्रों इसमें दो तीन इश्यूज उठते हैं कि आप एक दिमाग में आपके बात आ सकती है। मैं एनालिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूं कि भाई प्रधानमंत्री उनको निकाल क्यों नहीं देते ऐसे लोगों को। लेकिन मित्रों डेमोक्रेसी में निकालना इतना आसान नहीं होता, बहुत से फैक्टर काम करते हैं। जो मैंने कल आपको बताया था, बहुत से प्रेशर्स ग्रुप होते हैं वो काम करते हैं और आसान भी नहीं होता है निकालना। और फिर एक ऐसी कोई परंपरा भी नहीं रही है कि कोई वक्तव्य देने पर ही किसी को निकाल दिया जाए। और सबसे अच्छी बात तो यह है, एक सजेशन के तौर पर आप अपने दिमाग में बात ला सकते हैं कि एक पैक्ट ही क्यों नहीं बना दिया जा रहा है कि जो इस कुछ विशेष किस्म के जो वक्तव्य देंगे, यदि वो मंत्री हैं तो निकाल दिए जाएंगे, और यदि वो मंत्री नहीं है तो उन्हें ऐसे निंदा प्रस्ताव से उनकी सामूहिक रूप से संसद निंदा करेगी। अगर वो एक्ट बना दिया जाता है तो ये सारी चीजें सुलझ सकती है। क्योंकि आप देखते हैं कि लगातार कुछ न कुछ ऐसा सुनने में आता है कि इस तरह के वक्तव्य दिए जा रहे हैं चुनावी प्रचार के दौरान या इवन उसके बाद भी। तो ये एनालिसिस करने के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको केवल बताया है, अदरवाइज परीक्षा की दृष्टि से, सिविल सर्विस की परीक्षा की दृष्टि से यह कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना नहीं है मित्रों। अब मैं आता हूं न्यूज़पेपर पर। न्यूज़पेपर्स की कुछ क्लिपिंग्स बहुत अच्छी हैं, मैं उनकी चर्चा यहां विस्तार से नहीं करूंगा क्योंकि वक्त इस बात की इजाजत नहीं दे रहा है। फिर भी ये क्या है ये मैं आपको बता दूं ताकि आपके ध्यान में रहें और आप एक बार नॉलेज सेंटर तक पहुंचने की कोशिश करें। ताकि पूर्वोत्तर हमारे लिए जरूरी क्यों है, इस शीर्षक से बहुत खूबसूरत सामग्री दैनिक भास्कर में आया हुआ है। और ये जो सामग्री दोस्तों, ये डीवी भास्कर करके आता है, ये अलग से यहां भोपाल में आता है, उसमें ये सामग्री आती है। मुझे नहीं पता कि दूसरी जगह भास्कर के अखबार में ये अवेलेबल होता है या नहीं होता है। पूर्वोत्तर आपको मालूम है, मैं शुरू से कहता रहा हूं कि जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हैं तब से लगातार पूर्वोत्तर की ओर उनका विशेष ध्यान है। और मैं हमेशा जोर देता आ रहा हूं कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इमर्ज हो रहा है सिविल सर्विस के लिए, इंटरव्यू की दृष्टि से भी और मेंस एग्जामिनेशन की दृष्टि से भी। तो इसमें बहुत अच्छे तरीके से उन्होंने दिया है कि कैसे नॉर्थ ईस्ट हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट भूमिका रखता है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से। और इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद आपको यह भी लगेगा, इस दृष्टि से भी आप पढ़िएगा कि क्या होता है कंटेंट बेस्ड राइटिंग। तो कंटेंट आप किसको कहते हैं, याद है कि कंटेंट का मतलब केवल आर्टिकल नहीं होता, विचार होते हैं, ऐसे विचार जो इतने तथ्यात्मक होते हैं जिन्हें आसानी से लागू किया जा सके। ये है दोस्तों, इसको पढ़िएगा। दैनिक जागरण में जयराम रमेश जी का परमाणु ढांचे का परिदृश्य शीर्षक से लेख है, बहुत ही अच्छा लेख है। और मैं आपको बता चुका हूं कि जयराम रमेश बहुत अच्छे विचारक हैं, पॉलिटिशियन तो थे ही, यूपीए गवर्नमेंट में मिनिस्टर भी रहे हैं और ये खुशी की बात है कि ये लगातार लिख रहे हैं। मित्रों, ये विदेशों में तो ये बहुत बड़ी परंपरा है क्योंकि जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो पॉलिटिशियंस होते हैं, वो लिखते भी हैं क्योंकि मिनिस्टर बनने के बाद आपकी क्षमता बहुत बढ़ जाती है, आपको इनसाइड स्टोरीज मालूम रहती हैं, आपका जो नॉलेज है, जो एक्सपोजर है, वो बहुत ब्रॉड हो जाता है और मुझे लगता है कि ये होना चाहिए कि फिर उसे समाज के हित में या नॉलेज के को एनरिच करने के लिए वो लिखें। और जयराम रमेश जी ये काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा आर्टिकल है वो, आप लिखिएगा। आपको मालूम है कि भारत किस तरह से एनर्जी की क्राइसिस से गुजर रहा है, उस दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। मित्रों, बिजनेस स्टैंडर्ड में एक एडिटोरियल आर्टिकल है, किराना बनाम ई कारोबार। आपको मालूम है कि अभी जो हमारे राष्ट्रपति जी की किताब जो आ रही है, उनकी ऑटोबायोग्राफिकल किताब, वो केवल अभी 3 सप्ताह तक केवल ऑनलाइन बिक्री होगी, उसकी स्टोर्स पर उपलब्ध नहीं होगी। तो ये ऑनलाइन बिक्री और एफडीआई और खासकर स्टोर हाउसेज, इनको लेकर के एक विवाद भारत में उठ खड़ा हुआ है एफडीआई को लेकर के। आप देखते हैं कि लगातार ये चीज बातें होती रहती हैं, उस पर मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से एक नया प्रश्न बन रहा है, उसको लेकर के एक आर्टिकल है। डिजिटल इंडिया को लेकर के बिजनेस स्टैंडर्ड का एक आर्टिकल है कि भारत में जो डिजिटल इंडिया की बात कही जा रही है, उसको कैसे स्थापित किया जा सकता है। बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए हुए हैं, उसको देख लीजिएगा। दैनिक जागरण का एक और है, अमेरिका में नस्लवाद की जो एक को लेकर के जो कि आंदोलन सा उठ खड़ा हुआ है, आग भड़क गई है, उसको लेकर के पहले भी मैंने इस पर आर्टिकल डाले हैं, रिपीट करने की दृष्टि से एक है दोस्तों। इसके बाद फिर इकोनॉमिक टाइम्स में 2 आर्टिकल हैं, एक तो इकोनॉमिक टाइम्स का है जो खासकर हमारे यहाँ टीकाकरण है, उसको लेकर के एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, बहुत ही तथ्यात्मक आर्टिकल है, और चूंकि मिलेनियम गोल से भी जुड़ा हुआ है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल से, मैंने अंडरलाइन कर लिया है, जिसको देख लीजिएगा। और एक एडिटोरियल कमेंट इकोनॉमिक टाइम्स का ही, खासकर केरोसिन ऑयल, जो मिट्टी का तेल जिसे हम कहते हैं, उसकी उस पर सरकार नियंत्रण लगाने जा रही है ताकि उसका उस पर जो दी जाने वाली सब्सिडी है वो धीरे धीरे कम की जा सके। तो क्या पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेकर के आ रही है, उस पर एक एडिटोरियल कमेंट है, बहुत ही अच्छा एडिटोरियल कमेंट है क्योंकि सब्सिडी का प्रश्न अब देश के एक तरह से मेन स्ट्रीम में आ गया है और बहुत जबरदस्त रूप से इस पर बहस शुरू हो गई है। तो इसको आप जरूर देखिएगा क्योंकि कैसे केरोसिन का मिसयूज हो रहा है और केवल 1% केरोसिन ही यूज हो रहा है, केरोसिन खाना ईंधन के रूप में, इस तरह बाकी ज्यादा से ज्यादा कर 99% केरोसिन का जो यूज है वो इलेक्ट्रिसिटी के लिए किया जा रहा है, सोच करके देखिए, फ्यूल ऑफ लाइटिंग के लिए। तो ऐसी स्थिति में और सब्सिडी हम इतना ज्यादा दे रहे हैं, तो इस दृष्टि से बहुत अच्छा ये एडिटोरियल कमेंट है। मित्रों, अब इसके साथ ही अब मैं बिल्कुल अंतिम चरण पर आता हूं और जो अंतिम चरण है वो ईमेल का है, तो मैं 2 मित्रों को धन्यवाद दे दूं, आभार व्यक्त कर दूं, जिनके मेल मैंने शामिल किए हैं, वह विक्रम कुमार पाठक बहराइच से और भरत बालियान चेन्नई से। आप दोनों का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ मेल्स क्लासेस के बारे में आए हुए हैं, वो क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं, तो मैं बता दूं कि जब आप afis.com की वेबसाइट पर जाएंगे तो क्लासेस वाले को क्लिक करें और वहां आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी कि आपको क्या क्या पढ़ाया जाएगा, कितने घंटे का होगा, क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और साथ ही आप कैसे अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, वहां सारी जानकारियां मित्रों अवेलेबल हैं। एक मेल और भी है रवि किरण का, हैदराबाद से, वो इंग्लिश मीडियम के हैं, उन्होंने जानना चाहा है कि क्या क्लासेस उनके लिए फायदेमंद हो सकती हैं। रवि, मैं केवल इतना ही कह सकता हूं कि मूलतः तो ये क्लास हिंदी मीडियम में होगी लेकिन इंग्लिश मिक्सअप थोड़ा बहुत वो चलता ही है। अगर आप मेरा एएफआई, मेरा जो ऑडियो गाइडेंस आता है, इसको आप समझ सकते हैं तो मैं समझता हूं कि क्लास को भी आप समझ लेंगे। पिछली जो क्लास हुई थी उसमें कुछ ऐसे स्टूडेंट थे जो साउथ के भी थे और जो कश्मीर के भी थे, इंग्लिश मीडियम के हमारे पास लगभग 30% स्टूडेंट आए थे और उनको कहीं चीजों को समझने में कोई दिक्कत नहीं हुई थी। मैं अब इसके बारे में दावे के साथ तो कुछ नहीं कह सकता, या आप पर डिपेंड करेगा कि आपकी हिंदी की समझ कितनी है और उस लेवल पर आप पहुंच करके इससे फायदा उठा सकते हैं या नहीं उठा सकते हैं, निश्चित रूप से निर्णय आपको ही लेना होगा। हाँ मित्रों, अब मैं अंतिम जो बात है उस पर आता हूं। मालूम है कि कल संडे है, कल ऑडियो गाइडेंस अवेलेबल नहीं होगा, तो कल छुट्टी है, कल आप एंजॉय कीजिएगा, लेकिन 2 आर्टिकल नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल होंगे। एक जो अभी जो दिसंबर महीने की योजना आई है उसका एक आर्टिकल है, द थ्रेट आर ए पोटेंट सोर्स ऑफ ग्रोथ, एफडीआई को लेकर के है, एफडीआई में रिटेल सेक्टर में जो एफडीआई को लेकर के जो बहस चल रही है उसको लेकर के एक बहुत अच्छा आर्टिकल है, ये अवेलेबल रहेगा। और नवंबर महीने की योजना जो हिंदी का है उसमें एक आर्टिकल अच्छा है, देशज सूक्ष्म जीवी ई अवशिष्ट प्रबंधन, चूंकि हम स्वच्छता की लगातार बात कर रहे हैं तो ये आर्टिकल भी मुझे इंपॉर्टेंट लगा, तो ये दो आर्टिकल नॉलेज सेंटर पर अवेलेबल रहेंगे। तो मित्रों कल रविवार का दिन है, आप रविवार के दिन को एंजॉय कीजिए, ऊर्जा इकट्ठी कीजिए ताकि मंडे को और भी अधिक उत्साह के साथ हम आप मिल सकें और फिर सिविल सर्विस की तैयारी के बारे में जमकर बातें कर सकें। तब तक के लिए मैं इजाजत चाहूंगा, संडे का दिन और आज का दिन भी आपके लिए बहुत सुखकारी हो, एनर्जेटिक हो और आनंददायक हो। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से मेरा नमस्कार स्वीकार करें और इजाजत दें, नमस्कार।